नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پیارے بچوں سب سے پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب ایک ایسی پیاری کتاب ایسی خوبصورت کتاب ایسی برکت والی کتاب ایسی روشن اور نورانی کتاب جس نے سارے عالم کو روشن کر دیا ہے ہدایت کے نور سے روشن کر دیا شفا کے نور سے روشن کر دیا اور نور ہی نور کر دیا ہے اور وہ کتاب ہے قرآن پاک کون سی کتاب ہے پاک کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات فراہم کی جاتی ہے ہمارے اس پروگرام کے ذریعے سے مختلف سیگمنٹس آپ کے لیے لے کر آتے ہیں اور ہر سیگمنٹ میں ایک انوکھی ایک دلچسپ بات ہم سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت بھی کرتے ہیں اور آخر میں ایک زبردست مقابلہ بھی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کون سا ہونے والا ہے اور ہماری ٹیم اے اور یہ رہی ٹیم بی ان دونوں ٹیموں میں سے جو سلیکشن ہوگی ان میں کون اس مقابلے کو جیتتا ہے اور ہمیں آج کے مقابلے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی جانب اور اس سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں آگے بھی فرمایا پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بندے کی مرضی ہے اب بندے کی مرضی ہے کہ درود کم پڑھے یا زیادہ پڑھے جب ہمیں پتہ چل جائے کہ کسی کام کا فائدہ ہے تو سمجھدار کیا کرتا ہے اس کام کو کرتا ہے نا زیادہ سے زیادہ کرتا ہے تو درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں تو سمجھدار بندہ کون ہے جو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے چاہیے آئیے ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پیارے بچوں ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے تجوید کلاس
قرآن میرا نور والی کتاب
اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ حمزہ بھائی موجود ہوتے ہیں اپنی پیاری سی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سناتے ہیں سب سے پہلے سنتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت اور پھر جانتے ہیں کہ آج ہم نے قرآن پاک کی درست ادائیگی کے لیے کون سا قاعدہ سیکھنا ہے جی حمزہ بھائی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم
سبحان اللہ پیارے بچوں جن آیات کی تلاوت آپ نے سنی یا آپ کے سامنے بورڈ پر نظر آ رہی ہیں آج ہم نے جو قاعدہ سمجھنا ہے وہ اس بارے میں ہے کہ قرآن پاک میں کہاں پر ہمیں کھینچنا ہے اور زیادہ کھینچنا ہے اور کہاں پر ہمیں بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے थोड़ा लंबा कायदा है ये, यानी इसमें बहुत सारे कायदे आते हैं, लेकिन आज हम इन कवायद में से सिर्फ दो कायदे को समझेंगे। कितने कायदे को समझेंगे? बस दो। लेकिन उन दो कायदों को समझने से पहले आपने कुछ चीज़ों को समझना है, और वो जो समझना है सबसे पहले आपने वो है हुरूफ़े मद्दा। कौन से हुरूफ? कौन से हुरूफ? हुरूफ़े मद्दा। हुरूफ़े मद्दा अगर आपको समझ में आ गए ना, तो फिर आगे के तमाम कायदे आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हुरूफ़े मद्दा होते क्या हैं। देखिए, हुरूफ़े मद्दा है तीन। बस कितने हुरूफ़े मद्दा?
तीन।
कितने हैं भाई?
तीन।
एक है अलिफ, एक है वाव, और तीसरा है या। पहला अलिफ, दूसरा वाव, तीसरा
या।
ये तीन हो गए हुरूफ़े
मद्दा।
अब ये अलिफ, वाव, या ये हुरूफ़े मद्दा तो हैं, लेकिन अलिफ मद्दा कब होगा, वाव मद्दा कब होगा, या मद्दा कब होगा, ये बहुत आसान है। अभी आप समझेंगे, आप फौरन सीख जाएंगे। ये देखें, अलिफ से पहले, अलिफ से पहले ये रहा अलिफ। हुरूफ़े मद्दा तीन थे ना, उसमें से पहला अलिफ था, तो अलिफ के बारे में सीखेंगे पहले। ये रहा अलिफ। अलिफ से पहले आपने हमेशा देखना है कि ज़बर है या नहीं। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर हो
अलिफ मद्दा,
अलिफ से पहले ज़बर हो
अलिफ मद्दा।
और आपने देखना है वाउ साकिन, ये रहा वाउ साकिन। वाउ के ऊपर जज़्म है ना, तो इसे कहते हैं वाउ साकिन। जहाँ भी वाउ साकिन आए तो उससे पहले आपने देखना है पेश है या नहीं। पेश है ना, यहाँ पे वाउ साकिन से पहले पेश हो तो वाउ
मद्दा।
हाँ, ये हो गया अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर। ये हो गया वाउ मद्दा, वाउ साकिन से पहले
पेश।
और या मद्दा क्या होता है? या मद्दा भी आसान है, आपको आता है? माशाल्लाह, क्या बात है। अभी हम किड्स मदनी स्टार के नाज़रीन को भी समझाते हैं, फिर आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। ये है या मद्दा, ये रहा या मद्दा, ये भी बहुत आसान है। ये देखें, ये है या साकिन। आपने देखना है या साकिन से पहले ज़ेर है या नहीं। अगर या साकिन से पहले ज़ेर हो तो ये होता है या मद्दा। अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद्दा। वाव साकिन से पहले पेश,
वाव मद्दा।
और या साकिन से पहले ज़ेर,
या मद्दा।
ये है हुरूफ़े मद्दा। मुश्किल? बहुत मुश्किल? आसान? हाँ, बहुत आसान, बहुत आसान है। हुरूफ़े मद्दा तीन हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और
या मद्दा।
अब मैं बोलूँगा, आप रिप्लाई करेंगे। अलिफ से पहले ज़बर हो तो क्या होता है?
अलिफ मद्दा।
और वाव साकिन से पहले पेश हो तो क्या होता है? और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो क्या होता है? अच्छा, चले अब आप मुझे एक बात बताएं, अलिफ से पहले पेश हो तो क्या होता है?
अलिफ मद्दा
हैं। अलिफ से पहले पेश हो, कुछ भी नहीं होता, अलिफ से पहले पेश कैसे आएगा? अच्छा चले, वाव साकिन से पहले ज़ेर हो तो नहीं, कैसे ज़ेर कैसे आएगा? ज़ेर आ ही नहीं सकता। देखें, अलिफ की दोस्ती है ज़बर से, अलिफ से पहले हमेशा क्या होगा? अलिफ मद्दा होने के लिए। और वाव की दोस्ती किससे? पेश से। और या की दोस्ती किससे? ज़ेर से। वाव साकिन से पहले पेश, या साकिन से पहले ज़ेर, और अलिफ से पहले ज़बर। पेश ज़बर, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा, और या साकिन से पहले ज़ेर हो गया या मद्दा। ये जो हुरूफ़े मद्दा भी आपने सीखे हैं ना, ये आपने इसलिए सीखे हैं कि ये कुरान पाक में जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ पर आपने एक अलिफ खींचना है, एक अलिफ
खींचना है।
और एक अलिफ कितना होता है? जैसे आप बोलते हैं ना, जितना लंबा आप बोलते हैं माँ फूल, जितना लंबा खींचते हैं ना माँ बोलते हैं, माँ ऐसे तो नहीं बोलते, माँ फूल ऐसे बोलते हैं, बस इतना आपने इन तीनों को खींच के पढ़ना है। ये होते हैं हुरूफ़े मद्दा। अब कहीं पे ऐसा होता है कि इन हुरूफ़े मद्दा को आप ज़्यादा भी खींचते हैं, सिर्फ एक अलिफ नहीं खींचते, ज़्यादा भी खींचते हैं। इन हुरूफ़े मद्दा को जहाँ ज़्यादा खींचना होता है, उनकी छः किस्में बनती हैं। कितने किस्में बनती हैं? कोई परेशानी वाली बात नहीं है, छः किस्में भी बहुत आसान है। आज मैं आपको दो किस्म समझा देता हूँ। एक है, जब भी आप देखें कि हुरूफ़े मद्दा के बाद ये अलिफ मद्दा है, ये वाव मद्दा है, या फिर ये या मद्दा है।
अलिफ मद्दा।
अलिफ मद्दा कैसे भाई? अलिफ मद्दा कैसे है? वाव मद्दा क्यों नहीं है?
वाव नहीं है ना।
अच्छा, वाव नहीं है। हाँ, अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा। अब ये है हुरूफ़े मद्दा। आपने कुरान पाक में देखना है कि हुरूफ़े मद्दा के बाद कहीं पे जज़्म या तस्दीर लिखी हुई आ रही है या नहीं। اگر حرف مدہ کے بعد جزم آ جائے یا تشدید آ جائے تو وہاں پہ اب آپ نے حرف مدہ کو ایک الف نہیں کھینچنا بلکہ اب آپ نے وہاں پہ تین الف کھینچنا ہے، زیادہ کھینچنا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ حرف مدہ ہے، اس کے بعد تشدید ہے، ہاں اب یہاں پہ ایک الف کھینچیں گے تین الف، اور یہاں پہ ایک الف کھینچیں گے تین الف۔ اچھا چلیں پھر یہاں مجھے بتائیں، یہاں پہ ایک الف کھینچیں گے تین الف، ایک الف، یس، کیونکہ یہاں پہ واؤ مدہ کے بعد حرف مدہ کے بعد جزم بھی نہیں ہے اور تشدید بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح یہ حرف مدہ ہے نا، تو اس کے بعد اگر جزم آ جائے تشدید آ جائے تو آپ نے تین الف کھینچنا ہے، زیادہ کھینچنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے نا، حمزہ لکھے ہوا آ جائے، تو وہاں پہ آپ نے اب ایک الف نہیں، یہاں پہ آپ نے دو الف کھینچنا ہے۔ کتنا کھینچنا ہے؟ تو حرف مدہ آپ نے سمجھے، اور اسپیشلی بچوں آپ نے یہ بات سمجھی کہ حرف مدہ کے بعد اگر کہیں پہ جزم آ جائے یا تشدید آ جائے تو وہاں پہ آپ ایک الف نہیں بلکہ تین الف کھینچیں گے، اور اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ لکھا ہوا آ جائے تو وہاں پہ آپ ایک الف نہیں بلکہ دو الف کھینچیں گے۔ اس طریقے سے جب آپ اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھیں گے، کہیں ایک الف کھینچ رہے ہیں، کہیں تین الف کھینچ رہے ہیں، کہیں دو الف کھینچ رہے ہیں، تو قرآن پاک پڑھنے میں حسن بھی آتا ہے، خوبصورتی بھی آتی ہے، پڑھنے میں سرور بھی آتا ہے، اور ہمیں اچھا بھی لگتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کو قواعد اور مخارج کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔
قرآن میرا نور والی کتاب۔
پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود جو سورتیں ہیں ان کی فضیلت جانتے ہیں، ان کی برکتیں کیا ہیں، ان کی شان کیا ہے، وہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ جب ہم ایسی باتیں سنتے ہیں تو عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر ہم عمل بھی کرتے ہیں، ہمیں ثواب بھی ملتا ہے۔ آج جو سورت ہے نا، جس کی برکت، جس کی شان ہم نے سمجھنی ہے، وہ ہے قرآن پاک کی سورت نمبر 108، اور اس سورت کا نام ہے سورت تکاثر۔ کیا نام ہے؟ اچھا، کوئی بتا سکتا ہے یہ سورت تکاثر قرآن پاک کے کس بارے میں؟ ایک دو تین چار، ماشاء اللہ، کون سے بارے میں؟ آواز سے بتا دیں سر۔ اما پارے میں ہے، پارہ نمبر 30 میں۔ جی ہاں، چھوٹی سی سورت ہے، مشہور سورت ہے، اور اس کا ترجمہ بہت سمجھنے والا ہے۔ جو اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں نا، آپ بھی اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو اچھا لگے گا اور عمل کرنے کا جذبہ بڑھے گا، کیونکہ اس میں ہمیں سمجھایا گیا ہے آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں۔ اس سورت کے بارے میں سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے۔ کتنی آیتوں کی؟ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کون طاقت رکھتا ہے، اس کی کون طاقت رکھتا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں کوئی روزانہ الحاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ الحاکم التکاثر تو چھوٹی سی سورت ہے نا، چند آیتیں ہیں، اس میں تھوڑی سی لائن ہے۔ تو کیا تم میں کوئی روزانہ الحاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی یہ جو سورت ہے، یہ سورت پڑھنا ثواب میں 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے۔ یعنی کوئی صرف سورت تکاثر پڑھ لے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو 1000 آیتیں پڑھنے میں کتنا زیادہ ٹائم لگتا، کتنا زیادہ ٹائم چاہیے، روزانہ پڑھنا تو بہت سارا ٹائم چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف سورہ تکاثر پڑھ لے، کتنے منٹ لگیں گے سورہ تکاثر پڑھنے میں؟ اگر آپ اچھا پڑھیں، صحیح پڑھیں، قواعد اور مخارج کے ساتھ پڑھیں، تو آپ کیا لگیں گے؟ 2 منٹ۔ کتنے منٹ لگیں گے؟ اور 2 منٹ میں آپ کو کتنی آیتوں کا ثواب ملنے والا ہے؟ 1000 آیتوں کا ثواب ملنے والا ہے۔ پیارے بچوں، ہے نا کتنی فضیلت، کتنی برکت والی سورت۔ تو آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہم اپنی تلاوت میں سورۃ تکاثر کو بھی شامل کریں گے، انشاءاللہ عز و جل۔ اسی کے ساتھ پیارے بچوں، ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن۔
قرآن میرا نور والی کتاب۔
پیارے بچوں اور کڈز مدنی چل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن، اور میں ہوں قطمیر رضا اتاری۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں किन किन चीजों का जिक्र है और फिर इन चीजों के बारे में आपसे इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर करेंगे। तो आइए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम अल्लाह पाक के एक नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र करने जा रहे हैं और इनका जिक्र कुरान पाक में किस तरह आया है इस बारे में भी हम सुनेंगे और कितनी बार कुरान पाक में इनका जिक्र आया है इस बारे में भी जानेंगे। प्यारे बच्चों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में 27 मरतबा आया है। प्यारे बच्चों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भाई हारान बिन तारख के बेटे हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की विलादत इराक के शहर बाबुल में हुई। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद की जलाई हुई आग से सही सलामत बाहर तशरीफ लाए तो सबसे पहले आपके नबी होने की तस्दीक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने की। प्यारे बच्चों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नाम लूत है और इसका मायना है दिली मोहब्बत, क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपसे बहुत मोहब्बत फरमाते थे और दिल से आपके साथ नरमी फरमाते थे, इसलिए आपका नाम लूत है। प्यारे बच्चों, लूत ये नाम अल्लाह पाक के एक नबी का है, लिहाजा इस नाम को बुरा नहीं समझना चाहिए। प्यारे बच्चों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम सफेद रंग वाले, हसीन चेहरे वाले, बारीक नाक और खूबसूरत दांतों वाले थे। जब आप अलैहिस्सलाम मुस्कुराते तो बहुत ही प्यारे अंदाज से मुस्कुराते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बहुत सारे इनामात अता फरमाए थे। एक इनाम तो ये था कि जिस तरह अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद और उसकी कौम से निजात अता फरमाई थी, ऐसे ही आपको नमरूद और उसकी कौम से निजात अता फरमाई। अल्लाह पाक ने आपको नबुवत भी अता फरमाई और हिकमत भी अता फरमाई। हिकमत से मुराद लोगों के दरमियान होने वाले झगड़ों में बेहतरीन फैसला करने की ताकत अता फरमाई। प्यारे बच्चों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह पाक की नाफरमानियां करती थी और बुरे काम किया करती थी। आप इन्हें बहुत समझाया करते थे मगर वो इन कामों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अगर इनकी नाफरमानियों की बात की जाए तो वो मुसाफिरों को तंग करते थे, मुसाफिरों का माल लूट लिया करते थे, रास्ते में चलने वालों को तंग करते, इन्हें पत्थर मारते, बात बात पर गालियां देते, तालियां और सीटियां बजाते, बुरी बुरी बातें किया करते, एक दूसरे का मजाक उड़ाते और भी बहुत सारे गुनाह थे जो वो किया करते थे। फिर अल्लाह पाक ने एक रात इन पर अज़ाब भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और आप पर ईमान लाने वाले लोगों से कहा गया वो सुबह होने से पहले इस शहर से बाहर चले जाएं, क्योंकि अब इस कौम पर अदाब आने वाला है। फिर कौम लूत पर इस तरह अदाब आया के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कौम लूत के शहर को उठाकर उल्टा करके फेंक दिया और फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक चीख मारी और फिर इन लोगों पर पत्थर बरसाए गए, यहाँ तक कि वो सब के सब लोग हलाक हो गए। बचने वाले वही लोग थे जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं कुरान पाक की तरफ और एक आयत सुनते हैं जिसमें हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वलूतन आतैनाहु हुक्मन व इल्मन व नजैनाहु मिनल क़रियतिल लती कानत तअमलुल ख़बाइथ इन्नहुम कानू क़ौम सौइन फासिकीन। तर्जमा कंज़ुल इरफान, और लूत को हमने हुकूमत और इल्म दिया और उसे इस बस्ती से इजाद बख्शी जो गंदे काम करती थी, बेशक वो बुरे लोग नाफरमान थे। प्यारे बच्चों, आज हमने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में सुना, इनका जिक्र कुरान पाक में किस तरह आया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ।
प्यारे बच्चों, आज आपने इस सेगमेंट में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में सुना। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कितनी दावत दी, कितना समझाया, समझाते रहे लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने बात, वो गालियाँ देते थे, लोगों को बुरा भला कहते थे, सीटियां बजाते थे, तालियां बजा के लोगों को तंग करते थे और ये लोग जो थे लोगों का माल लूट लिया करते थे। तो बहुत सारी बुराइयां इनमें थी, बहुत सारी बड़ी बड़ी बुराइयां, तो माने नहीं वो। आप अलैहिस्सलाम समझाते रहे तो अल्लाह पाक उनसे नाराज़ हुआ और अल्लाह पाक ने उन पर अजाब नाजिल फरमा दिया। अगर हम चाहते हैं हम आखिरत के अजाब से बचें तो हमें कोई भी बुरे काम नहीं करने चाहिए और हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। तो आज आपने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में सुना, उससे हमें मैसेज मिलता है कि हमें बुरे कामों से बचना है और अच्छे काम हमेशा करने हैं। इससे हमारी ज़िंदगी भी अच्छी होगी और हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी सेगमेंट की जानिब जिसमें एक एक्टिविटी होगी, एक मुकाबला होगा। देखते हैं हमारे इस एक्टिविटी में क्या होने वाला है। हमारे सेगमेंट का नाम है एराब पहचान कर लगाएं।
कुरान मेरा नूर वाली किताब।
इस सेगमेंट में करना क्या है? करना ये है कि जो भी लफ्ज यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ना, उस लफ्ज में कोई ना कोई हर्फ ऐसा होगा जिसपे कोई एराब नहीं होगा। जैसे यहाँ पे या पर भी जबर है, जज़म है, और हमजा पे जबर है, लाम पर पेश है, वाव पर भी एराब है, नून पर भी है, लेकिन काफ पे कोई भी एराब नहीं है। अब आपने मेरे पढ़ने से, मैं पढ़ के बताऊंगा, जैसे यस अलू ना का, मेरे पढ़ने से पहचानना कि काफ पे कौन सा एराब आएगा। वो फिर आपने तलाश करना है, वो रेड कलर की बास्केट आपके सामने है, उसमें सारे एराब लगे हुए हैं, जबर भी है, जेर भी है, पेश भी है, तशदीद भी है, जज़म भी है, सब है। वो आपने ढूंढना है, और जो सही जवाब आप बताएंगे या हो सकता है गलत बताएं, वो जवाब यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर सही होगा तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, आपका जवाब दुरुस्त होगा, और अगर गलत होगा, ये देखें जैसे सही जवाब शो हो गया ना, काफ पर जबर है, और अगर आप बोलेंगे जेर है, तो तब भी यहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपने गलती कर दी है, और इस तरह हमें एराब सीखने का भी मिल जाएगा। तो फिर मुकाबले शुरू करें। फिर टीम ए और बी से कौन कौन आ रहा है? टीम ए से कौन आएगा? टीम ए से चले आप आ जाइए, इनको ले लेते हैं, वहाँ पे आ जाए। और टीम बी से कौन आ रहा है? टीम बी से नहीं, उनको ले लेते हैं, आ जाए, आप आ जाए, आ जाए, शाबाश। चले मुकाबला शुरू करें
जी।
चले भाई, टीम ए के लिए पहला लफ्ज होने वाला है कौन सा? टीम ए के लिए कौन सा लफ्ज होगा? मादा युनफिकूना, मादा युनफिकूना, टीम ए। आपने तलाश करना है एक हर्फ का एराब। हाँ, सिर्फ एक हर्फ पे एराब नहीं है जी। क्या है ये?
जबर।
जबर है, कहाँ लगेगा जबर? कौन से हर्फ पे आएगा? बहुत सारे हर्फ है ना, मीम है, अलीफ है, दाल है, बहुत सारे।
वाव।
वाव पे, ठीक है भाई, ये कह रहे हैं वाव के ऊपर जबर लगेगा। दिखाइएगा क्या इनका जवाब दुरुस्त है, क्या वाव के ऊपर जबर है? ये रहा वाव, ये देखें वाव पे कोई भी एराब नहीं था, तो वाव पर जबर नहीं, बल्कि वाव के ऊपर आएगा जज़्म, पेश नहीं। हाँ, इसको पेश नहीं कहते, इसको जज़्म कहते हैं। ये देखें पेश, ये रहा पेश, में ऐसा गोल सा एक सर्कल होता है, लेकिन जज़्म जो है ना, वो दाल की तरह छोटा सा साइन होता है, तो ये जज़्म है और ये है पेश। तो जब भी जज़्म वाला हर्फ होता है ना, उसको हम साकिन पढ़ते हैं। मैंने पढ़ा था युनफी कूना, कूना, अगर इस पर मैं पेश पढ़ता तो मैं पढ़ता कुवू, कुवूना, ये गलत है ना, मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा, कूना पढ़ा है। तो वाव के ऊपर जज़्म आएगा, जबर नहीं आएगा, ये गलती हो गई अभी टीम ए से। टीम बी के लिए कौन सा लफ्ज है? टीम बी के लिए वमा तफअलू, टीम बी आपके लिए एक लफ्ज, वमा तफअलू, वमा तफअलू, यहाँ पर भी एक एराब तलाश करना है बस। अच्छा, क्या ढूंढ रहे हैं ये तो बता दें।
जज़्म।
अच्छा, जज़्म ढूंढ रहे हैं, ढूंढने कहाँ है? इसी बास्केट में कहीं ना कहीं छुपी हुई होगी। क्या है ये?
जज़्म।
जज़्म कहाँ पर?
वाव पे।
वाव के ऊपर जज़्म, और इन्होंने ये शेप देखा है। प्यारे बच्चों, आप लोग किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप लोग देखें गौर से कि क्या यही शेप है सही जवाब में। जी, जवाब दिखाइएगा। वमा तफअलू, यही शेप इन्होंने पकड़ा हुआ है, कह रहे जज़्म है। टीम बी का जवाब दुरुस्त हो गया है,
सुभानअल्लाह।
टीम ए से गलती हो गई थी, लेकिन टीम बी का जवाब कोशिशों के बाद ढूंढते रहे, लेकिन दुरुस्त हो गया है। टीम ए के लिए अगला लफ्ज है फइन्नल्लाह, फइन्नल्लाह। जी, क्या है ये?
जबर।
जबर, जेर तो नहीं है, कंफर्म
जी?
कहां पर?
हाँ।
जबर का, हा के ऊपर जबर, दिखाइएगा जवाब दुरुस्त है गलत। फइन्नल्लाह, ये हा है, हा के ऊपर एराब नहीं था, जबर हमेशा ऊपर आता है। टीम ए का जवाब दुरुस्त हो गया है। टीम बी के लिए अगला लफ्ज कुरहुल्लकुम, कुरहुल्लकुम। टीम बी माशाल्लाह फौरन जवाब तलाश कर लिया
जी। जबर।
जबर है, जबर कहाँ पर?
लाम के ऊपर।
लाम पर, लाम के ऊपर, काफ के ऊपर लगा दें, क्यों काफ पे नहीं लगाएंगे? क्यों भाई, क्यों नहीं लगाएंगे? अच्छा, काफ पे एराब है, हाँ काफ पे तो है, डबल डबल एराब हो जाएगा, तो लाम पे कह रहे एराब नहीं है। देखते हैं क्या जवाब दुरुस्त है, दिखाइएगा दुरुस्त जवाब क्या है। कुरहुल्लकुम, लाम के ऊपर एराब नहीं था, लाम पर जबर बताया है। टीम बी का जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अच्छा देखिए, तस्दीद है ना, तस्दीद, तस्दीद जिस हर्फ पर आती है तो उस हर्फ पर یا تو جزم ہوگا یا پھر زبر زیر پیش, کوئی نہ کوئی اعراب اس پہ ہونا ضروری ہے, تبھی تو پڑھیں گے نا اس کو. تو اسی لیے تشدید تو ہے لیکن اس پہ زبر نہیں تھا, اس لیے انہوں نے صحیح جواب تلاش کر لیا ہے. ماشاء اللہ عزوجل, کیا بات ہے آپ دونوں کی, دونوں نے اچھی کوشش کی ہے. اور ٹیم اے سے شروع میں غلطی ہو گئی تھی, کوئی بات نہیں, غلطی ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ غلطی ہوتی ہے ہمارے سیکھنے کے لیے. تو پیارے بچوں, آپ نے آج اعراب لگانا سیکھے, اللہ کریم ہمیں درست اعراب کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ عزوجل آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. آپ نے پروگرام کا انتظار بھی کرنا ہے, پروگرام خود بھی توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے, دوسروں کو دعوت بھی دینی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
نور والی, نور والی, نور والی کتاب قرآن, میرا نور والی کتاب.